ऐसी घटनाएं पहले होती रहती। कोई राक्षस आते थे, देखते से सीता को तो खाना चाहते थे या कोई अपहरण करके ले जाना चाहता था। तो भगवान ने कहा कि वे लोग तो घात में रहते हैं, तुम इधर आ गए, कोई ना कोई ले गया होगा या मार दिया होगा सीता को। और आए जल्दी जल्दी, चलो 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 चलो, आए तो देखे आश्रम में सीता जी नहीं है, रावण हरण करके ले गया था माया सीता का। तो भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं पहले ही कह रहा था कि सीता नहीं रही। वो भगवान रोने लगे और फिर कभी कहते हैं कि कभी कभी हमसे रूठ करके मान करके गोदावरी के तट पर बैठ जाती थी, चलो चलो वहाँ चलो वहाँ, जहाँ स्नान करती थी। तो भगवान घाट पर जा करके इधर उधर देख कर कह रहे, प्रिय तुम कहाँ हो कहाँ हो, तो सीता तो वहाँ है नहीं। फिर कमल को देख कर कहते हैं कि तुम्हारा मुख कमल जैसा था, इतनी सुंदरी, वो तुम्हें कोई राक्षस खा गया, क्या हुआ, लगे विलाप करने। 10 अध्याय में वाल्मीकि रामायण में भगवान के विलाप का वर्णन है। और ऐसे पूछ रहे थे सीता को, वैसे तो आज का पागल मनुष्य भी नहीं पूछेगा वास्तव में, कितना भी अपने वाइफ में आसक्त हो लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, कोई झाड़ से थोड़े पूछेगा। अरे कोई पुलिस को देगा इन्फॉर्मेशन कि हमारी पत्नी कहाँ चली गई, या पता लगाइए, चाहे टेलीविजन में देगा, रेडियो में देगा, लेकिन वृक्ष से पूछे ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान किसी वृक्ष की शाखा को पकड़ करके, वृक्ष को पकड़ कर कहते थे तुमने देखा है सीता को, तो हवा चलती थी और वृक्ष की शाखा ऐसे हिलती थी, तो ये मानते थे हो नहीं देखा है, ये ना ना कर रहा है, ऐसा ऐसे भगवान कह रहे हैं ये नहीं देखा है। और फिर किसी पशु से पूछते हैं, हरिण से पूछते हैं, गाय से पूछते हैं, वन के जीवों से पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता, मृग नहीं, तुमने सीता को देखा है? किसी से, पशु से पूछ रहे हैं, वृक्ष से पूछ रहे हैं, पत्थर से पूछ रहे। इस लीला को जिन लोगों ने देखा या सुना उनका धैर्य खत्म हो जाता है, वे कहते हैं अरे बाप रे, ये भगवान कैसे, भगवान क्या इतना अज्ञ हो सकता है? और तो और शिव जी की पत्नी का दिमाग खराब हो गया। उस समय शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए थे दक्षिण भारत और लौट रहे थे। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरते अविनाशी। उसी समय सीता का हरण हुआ था और भगवान शिव आ रहे थे, तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान का दर्शन करूं, लेकिन जा नहीं सकते थे। भगवान राम के पास अगर शिव जी जाते तो खुल जाता है रहस्य कि ये भगवान है, अवतार लिए। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना चाहते थे। रावण ने मांगा था कि मनुष्य या बानर के हाथ से मेरी मृत्यु होनी चाहिए, तो भगवान चाहते थे कि रावण उनको मनुष्य ही समझे, भगवान न समझे। लेकिन अगर शिव जी जाते दर्शन करने, प्रणाम करने, तो सारे संसार में यह न्यूज फैल जाता कि शिव जी जाकर के उस राजकुमार को प्रणाम किए, इसका मतलब वो भगवान है। तो इसलिए शिव जी निकट नहीं जा रहे थे, लीला देख रहे थे दूर से कि भगवान श्री राम पूछ रहे हैं वृक्षों से, लताओं से, पक्षियों से, पशुओं से। तो वो तो समझ रहे थे कि ये भगवान है, इनकी ये दिव्य लीला है। लेकिन उनके पास उनकी पत्नी थी सती जी। सती ने जब देखा भगवान की इस लीला को, तो मन में ठान लिया ये भगवान हो नहीं सकता है। भगवान किसी अज्ञ पुरुष की तरह अपने पत्नी को कैसे खोज सकता है? तो सर्वज्ञ है, सब जगह व्याप्त है, सब जानता है। लेकिन भगवान शिव का शरीर पुलकित था, आंखों में आंसू था यह लीला देख करके, और उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद, यह कह करके अपने घर कैलाश के तरफ भगवान शिव जाने लगे। जब जाने लगे तो सती जी देख रहे थे दशा कि इनको क्या हो गया, इनका दिमाग आज कैसे फेल हो गया। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब ना वही सीसा, सोई नृप सुत ही किन्ह परनामु, कही सच्चिदानंद परधाम। जिन शिव जी की पूजा सारा विश्व करता है, सारे देवता करते हैं, आज इनको क्या हो गया कि एक मनुष्य के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं। सती जी का तो, सती जी को तो भगवान की लीला समझ में आई नहीं, लेकिन वो शिव जी पर ही अज्ञान का आरोप करने लगी कि इनका ही दिमाग खराब हो गया है आज, लेकिन कह नहीं रही थी, संकोच बस कह नहीं रही थी कि आपको क्या हो गया है। लेकिन भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, वे सती के मन के भाव को जान गए। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, ये साक्षात परब्रह्म है, भगवान है, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। लेकिन लाग न उर उपदेश यद्यपि कहु शिव बार बहु, बारम्बार शिव जी ने कहा लेकिन हृदय में उपदेश काम नहीं कर रहा था, मन की शंका नहीं गई। जब शिव जी ने कहा कि देखो अगर तुम्हारे हृदय में बहुत अधिक संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा ले लो कि ये भगवान है कि राजकुमार है, मनुष्य, तुम परीक्षा ले लो। तो इस पर तैयार हो गई सती, तो कहे कि और मैं परीक्षा लेने जाऊंगी यार, आप चलते रहेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं, मैं यहीं, ये बरगद का वृक्ष है, मैं यहीं बैठता हूँ। तब लग बैठी अहूँ बट छाही, जब लग तुम आयहूँ वहीं पाही। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे परीक्षा लेकर, तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। असक ही लगे जपन हरिनामा, यह कह करके भगवान शिव अपने जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, भगवान शिव तो जप करने लगे। वो समझा रहे थे अपनी पत्नी को लेकिन वो समझ नहीं रही थी, अब क्या करें। तो उन्हें कहा कि जाकर परीक्षा ले लो। तो जब सती जी परीक्षा लेने चली गई तो सोचा कि क्या विधि करूं, किस विधि से परीक्षा लूं। तो बार बार सती ने विचार करके सीता का वेश बनाया, मेकअप किया, सीता का वेश धारण किया, इसके लिए कि रास्ते में, जिस रास्ते में राम सीता को खोजते हुए जा रहे हैं उस रास्ते में मैं सीता बन करके खड़ी हो जाऊं। तो यदि वो मनुष्य होंगे तो कहेंगे आ मेरी सीता मिल गई, वो इस तरह से हमसे प्रेम करेंगे, आलिंगन करना चाहेंगे, कहेंगे मैं बहुत रो रहा था, कहाँ चली आई, कौन लाया है ला। यदि मनुष्य होंगे तो ऐसे बोलेंगे, और नहीं यदि भगवान होंगे तब तो कहेंगे, हमसे कुछ पूछेंगे कि माता जी आप कहाँ से आ गई और ये शिव जी कहाँ हैं, अकेले क्यों घूम रही हैं। उन्होंने सोचा सती ने कि अगर भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि मैं सती हूँ, और मनुष्य होंगे तो समझेंगे कि ये सीता है। जथावत सीता जी जैसा वेश बना ली। तो सीता का पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे हुई चली ते ही जहियावत सुरभूप। तो जिस पथ से भगवान सीता के विरह में रोते हुए आ रहे थे उसी पथ में सीता जी विपरीत मार्ग में जा रही थी, भगवान के तरफ। तो भगवान ने देखा तो भगवान तो सर्वज्ञ है, ईश्वर है, वो जान गए कि ये सती हैं। तो आगे बढ़कर भगवान श्री राम प्रणाम किए सती जी को और सती को प्रणाम करके सबसे पहला प्रश्न भगवान ने किया, माता जी अकेले कैसे घूम रही हैं, भगवान शिव कहाँ हैं। कभी अव्यंग भी कहे कि ऐसे तो अकेले स्त्री को घूमना नहीं चाहिए, आप अकेले कैसे घूम रही हैं। अब इतना सुनते ही सती तो बिल्कुल होश खो बैठी कि आह बाप ये क्या हो गया, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पराना, अरे ये तो प्रभु हैं, ये तो भगवान हैं। अब वो पश्चाताप करने लगी और आगे चली। अब तो शिव जी से चिंता होगी क्या कहूंगे कैसे कहूंगे, मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं दी। तो आगे देख रही है कि सीता का हरण हुआ नहीं है, भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण तीनों जा रहे हैं। सती जी देखने लगी, इधर देखती हैं तो सीताराम लक्ष्मण, पीछे देखती हैं तो सीताराम लक्ष्मण, आगे सब जगह सीता का हरण हुआ ही नहीं है। और इसके बाद देखी कि ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता सब फूल बरसा रहे हैं भगवान श्री राम पर, जय जय ध्वनि कर रहे हैं, वेद मूर्तिमान होकर के स्तुति गा रहे हैं। तो वो समझ गई कि ये तो भगवान हैं, परमेश्वर हैं। तो मैंने बहुत गलती किया, इनकी परीक्षा लेने चली। तो जो कुछ भी हुआ बाद में वे गई शिव जी के पास, तो शिव जी हंस करके पूछे, तबीयत ठीक है? कुछ उदास दिख रही थी सती जी। तो शिव जी ने पूछा कि सब तबीयत ठीक है ना? अच्छा, परीक्षा किस तरह लिया? तो सती जी सीधा झूठ बोलना चालू की। भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा कि कहूं हूं सत्य सब बात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं हूं सत्य सब बात। सब बात बोलो और सत्य सत्य बोलो, किस तरह से परीक्षा लिया, परीक्षा के बाद क्या हुआ। लेकिन सती जी सब बात नहीं कहेंगी और जो कहेंगी वो झूठ कहेंगी। देखिए, भगवान शिव ने कहा कि सत्य बोलो और पूरा पूरा सुनाओ। तो वो क्या कहते हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैं कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम किए थे ना वैसे जाकर हमने प्रणाम किया। सरासर झूठ बोल रही है। जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे मैं भी प्रणाम किया, और तुम जो कहा सो वृथा न हो। आप जो कहे वो मिथ्या नहीं है, वास्तव में राम जो है भगवान है, मुझे विश्वास हो गया। तो भगवान शिव इतना भोला नहीं थे कि अब ये जाकर के प्रणाम कर रही है। पहले के इसके वक्तव्य में बहुत अंतर था ना, पहले तर्क कर रही थी, विवाद कर रही थी, और इसके बाद जाकर प्रणाम कर ली, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। तो भगवान शिव ध्यान में देखने लगे कि क्या क्या सती ने किया है। तो जैसे जैसे वो गई थी, सीता का वेश बनाई थी, जैसे भगवान ने उनको प्रणाम किया था, वो सब देख लिया। और देखने के बाद भगवान शिव कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम भी झूठ बोल सकती। भगवान श्री राम की माया बहुत प्रबल है, किसी से भी झूठ बोलवा सकती है। तो सती जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोली थी, देवता लोग कभी झूठ नहीं बोलते। वेद में एक वाक्य है कि देवा हरितम अनृतम मनुष्य। भगवान ने सृष्टि किया तो देवताओं को सत्य बोलने के लिए बनाया, देवता सदा सत्य बोलते हैं, और मनुष्य झूठ बोलने के लिए बनाया गया है। झूठ बोलना है मनुष्य का काम है। मनुष्य समाज बिना झूठ बोले चल ही नहीं सकता है, झूठ बोलना ही है किसी भी तरह से। ये वेद का वाक्य है। इसका अर्थ है कि मनुष्य बहुत झूठ बोलते हैं, देवता कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन अब देवताओं में भी देव शिरोमणि भगवान शिव की पत्नी झूठ बोली तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में शिव जी बहुत रंज हुए कि ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। तो मैं यह कह रहा था कि भगवान श्री राम की लीलाएं ऐसी हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी चक्कर खा जाते हैं, ये क्या बात है। तो आज तक रामायण की रचना के बाद भी, सब के बाद भी लोगों को शंका बनी रहती है, कहते हैं नहीं नहीं ये तो भगवान, ये राम तो भगवान नहीं है, ये तो सीता जी को ऐसे खोज रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वन में विपत्ति काट रहे थे, 14 वर्ष वन में रहे, ऐसे रहे वैसे रहे। इन भगवान इस तरह की लीला किए हैं, बलकल वस्त्र पहनते थे, वन के फल खाते थे, जमीन पर सोते थे, 14 वर्ष किसी गांव में नहीं गए, किसी नगर में नहीं गए, अपने पिता के वचन को सत्य करना चाहते थे। कुंती महारानी कह रहे हैं कि जब जब आप अवतार लेते हैं तो ऐसी लीलाएं करते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर में पड़ जाते हैं और आप पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में आप विभू हैं, प्रभु हैं। यह कह करके कहते हैं कि नर विडम्बनम तू, नर चरितम तू अत्यंत विडम्बना, उसमें भी मनुष्य लीला जो आप करते हैं वो और विलक्षण है, आश्चर्यमय है। से एक लीला के विषय में वे कह रही हैं, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भयभावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। वह आपकी अद्भुत लीला है जब गोपी यशोदा ने अपने हाथ में रस्सी लिया आपको बांधने के लिए। जैसे ही रस्सी उठाई आपको बांधने के लिए तो आप रोने लगे, आपकी आंखों से अजस्र आंसू चुने लगे, आपकी आंखें चकित हो रही थी, आप फफक फफक कर रो रहे थे माँ के डर से। वह दशा जब मैं विचार करती हूँ तो मेरा चित्त मोह में पड़ जाता है कि क्या बात है। काल भी जिनसे डरता है, जमराज भी जिनसे डरते हैं, वे भगवान माँ यशोदा के भय से इस तरह से रो रहे थे। इस लीला को माँ कुंती ने अपने आंखों से देखा था। यह लीला इस तरह से हुई थी, मैं संक्षेप में कह देना चाहता हूँ। इस लीला को दाम बंधन या उखल बंधन लीला कहते हैं, और श्री कृष्ण के उदर में दाम बांधा गया था। दाम का अर्थ है रज्जु, रोप, इसीलिए उनका नाम है दामोदर। कृष्ण लीला में जिनके उदर में दाम बांधा गया था, रस्सी बांधा गया था, वो घटना इस कारण से हुई कि जब भगवान गोपियों के घर में माखन की चोरी करते थे और अनेक उत्पाद करते थे तो गोपियां माँ यशोदा के पास उलाहना लेकर के आती थी। कोई आती थी, माँ यशोदा तुम्हारा लाला आज हमारा सारा दही खा गया। दही तो खा गया कोई बात नहीं, सारा बर्तन भी फोड़ दिया। अब हम कितना रोज बर्तन नया नया मंगाए बताओ। माँ यशोदा कहती थी, अरे सखी तुम्हारा जितना बर्तन फोड़ा है सब ले जाओ, मैं दे दूंगी, मैं क्या करूं। माँ यशोदा कभी कृष्ण को डांटती नहीं थी, कभी नहीं। कितना भी उलाहना कोई दे, लेकिन वो जब देखती थी कृष्ण के मुख पर तो डांटना नहीं चाहती थी। वो सोचती थी कि इसको मारने की धमकी दूंगी तो उदास हो जाएगा, इसका हेल्थ बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसलिए कृष्ण को कभी नहीं डांटती थी। और कहती थी कि सखी मेरे घर में इतना माखन होता है, इसको अच्छा नहीं लगता है, तुम क्या करती हो कि तुम्हारा माखन इतना स्वादिष्ट होता है, जिसको खाने के लिए चला जाता है। तो वो कहते ठीक है तुम खाने दो, खाने दो। तो वो कहती थी, रानी जी हम खाने को देती हैं तब ये नहीं खाता है, इसको चुरा करके खाने की आदत है। तो माँ कहती थी बाद में, ठीक है जब चुरा करके खाने की आदत है तो चुराने दो, जितना चुराए उतना आकर बताना, मैं उसे दुगुना चौगुना दे दूंगी तुमको, खाने दो। कोई भी उलाहना आवे ये कृष्ण को डांटती नहीं थी। और भगवान चाहते थे कि माँ मुझे डांटे, भगवान इस रस का स्वादन करना चाहते थे, वे चाहते थे कि माँ मुझे डांटे, भर्सना करे, मुझे बांधे, मारने की धमकी दे, भगवान चाहते थे। क्योंकि भगवान ने आज तक केवल शासन किए हैं, ब्रह्मा के शासक हैं, इंद्र के शासक हैं, शिव जी के, सबको कंट्रोल में रखते हैं। दूसरों को कंट्रोल में रखते रखते भगवान को थोड़ी सी इच्छा हुई कि हमको कोई कंट्रोल में रखे। मैं जरा इस रस का आस्वादन करना चाहता हूँ, तो इनको कौन कंट्रोल करे, इनको कौन डांटे। और गोपियां बारंबार शिकायत करती थी तो माँ यशोदा हंस कर रह जाती थी, कभी कृष्ण को नहीं डांटी।